جو علم تفصیلی ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہوتا ہی تبلیغ کے لیے, انسانوں کے لیے ہے نا. وہ علم اجمالی جو عالم کے کورس کے علاوہ آپ کسی عالم کے پاس گئے, اپنی نماز کا مسئلہ پوچھ لیا, اپنے روزے کا مسئلہ پوچھ لیا, اپنی زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ لیا, وہ اپنے لیے ہے. لیکن یہ پوری کتاب پڑھ رہے ہیں آپ, کتاب الطہارت سے لے کے آخر تک, یہ کا کے لیے. تو یہ انسانوں کے لیے, امت کے لیے ہے. علم عالم جو ہوتا ہے تفصیلی, وہ امت کے لیے ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ امت کے لیے تعلیم کے لیے بھی ہوتا ہے, اصولاً تو تعلیم کے لیے ہی ہوتا ہے, لیکن تعلیم امت کو اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک اس کو تبلیغ نہ کریں, کیونکہ تبلیغ نہیں ہوگی تو اس میں طلب ہی نہیں ہوگی. تبلیغ سے طلب آتی ہے, طلب سے طالب علم بنتا ہے, تعلم آتا ہے, اس میں سیکھنے کا جذبہ آتا ہے. تو ترتیب اس کی اس طریقے کے ہے. اس وجہ سے جن لوگوں میں تبلیغ کرنا ہے ان لوگوں سے مناسبت ہونا, جن لوگوں میں ہم کو تعلیم کرنا ہے, تبلیغ کر کے ان سے مناسبت پیدا کرنا ہے. کون ہیں, کیسے لوگ ہیں, ان کا لیول کیا ہے, ایمان کا لیول کیا ہے, دین کی قبولیت کا لیول کیا ہے, استعداد کیسی ہے ان کے اندر, کیا حالات چل رہے ہیں امت مسلمہ کے پوری دنیا میں اس وقت, وہ کس طرح کی بات کو وہ لیتے ہیں, کس طرح کی بات کو وہ ریفیوز کر دیتے ہیں, ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ایک تو یہ بھی چاہیے. علماء کو جو جماعت میں نکالنے کو کہا جاتا ہے, نکلنے کو کہا جاتا ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر نہیں جائیں گے یہ عوام میں تو عوام کی ذہنیت کا نہ اندازہ ہو سکے گا, نہ ان سے مناسبت ہو سکے گی. پلس وہ جو آپ نے دعوت میں جا کے کہا ہوگا, سنا ہوگا, سیکھا ہوگا, وہ یہ ہوتا ہے کہ بے طلبوں تک خود ہی جانا پڑے گا, چاہے بڑے عالم صاحب ہوں, شیخ الحدیث ہوں, شیخ التفسیر ہوں. جب پیغمبر خود گئے تو دوسرے کا تو کوئی حساب ہی نہیں رہتا. تو دعوت میں جو ہوتا ہے وہ بے طلب تک خود جانا, داعی کا خود مدعو تک پہنچنا. اور داعی جو ہے وہ جب تک خود سے نہیں جائے گا تو دعوت کی جو حقیقت ہے پوری وہ متحقق نہیں ہوں گی. میسج جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو کور نہیں کرتا. آپ نے بھیج دیا, دین کی کوئی بات بھیج دی انسانوں تک, وہ بہت سی چیزوں کو کور نہیں کرتی جو دعوت میں چاہیے. دعوت میں توجہ چاہیے, میسج میں کہاں توجہ ہوتی ہے. شفقت چاہیے, کہاں شفقت کا اظہار ہو سکتا ہے. دعا چاہیے اس کے لیے, اس میں کہاں دعا ہوتی ہے. حکمت چاہیے کہ سامنے والا جاہل ہے, عالم ہے, غریب ہے, امیر ہے, پڑھا لکھا ہے, بے پڑھا لکھا ہے, دیہاتی ہے, یہ کیسی بات کو لے سکتا ہے. وہ آپ میسج کے اندر نہیں آ سکتی وہ بات. ایک سے زیادہ مرتبہ چاہیے, وہ بھی نہیں آ سکتی. مختلف اسلوب بدل کے چاہیے, ایسا نہیں سمجھ میں آیا شاید ایسا سمجھے, ایسا نہیں سمجھ میں آیا شاید ایسا سمجھے, اس سے تاثر نہیں لیا شاید اس سے تاثر لے. تو یہ دائی سے ہی ہو سکتی ہے, بہت سی چیزیں ہیں ایسی. جب تک دائی خود مدعو تک نہیں جائے گا تو دعوت کے اندر جو اور چیزیں چاہیے میسج کے علاوہ وہ نہیں پوری ہو سکتی. اسی لیے انسان کا انسان تک جانا ہے, اور جس لیول کا انسان جائے گا اس لیول کا فائدہ ہوگا. عالم جائے گا تو علم کے اعتبار سے فائدہ ہوگا, اور اس کی خوبیوں کے اعتبار سے صالح ہوگا, متقی پرہیزگار ہوگا, بہت بڑا صاحب فہم و بصیرت ہوگا, صاحب معرفت ہوگا, اس کے اعتبار سے اس کے اثرات ہوتے ہوں. اس لیے زمانے طالب علم سے ہی جماعت میں تھوڑا بہت جاتے رہنے کا مزاج رکھنے کو کہا جاتا ہے. بہت اچھا کیا جو آپ لوگ تشریف لے گئے, ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. اور یہاں آنے کے بعد میں بھی اس سے ٹچ میں رہنا, لگے میں رہنا, اجتماعات میں, سیروزہ کی جو جماعت اس میں, سیروزہ کی جماعتوں میں جماعتیں اپنے پاس آتی ہیں, ان کو وقت دینے میں, توجہ دینے میں, اکرام کرنے میں, خدمت کرنے میں, ان کی تعلیم میں بیٹھ گئے, ان کے ساتھ مذاکرہ کر لیا تھوڑا سا, یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. مدرسوں کے اندر تو چونکہ طالب علم آتے ہیں اور طالب علم ہماری شرائط پر آتے ہیں, تو ہم ان کو ہر طرح کا اصول, ضابطہ, बताते हैं कि भाई ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, आपको ये करना होगा, ऐसे करना होगा, इल्म हासिल करने के लिए या रहने के लिए ये ज़रूरी है, आपको उबे करना होगा, समोता चाहिए, आपको अदब करना होगा, वेद भी करेंगे, बदतमीजी करेंगे तो निकाल देंगे, ये सब चीज़ें मदरसे में चलती हैं, दावत में नहीं होती है सब चीज़ें। इसलिए दाई को मदऊ से ना अदब का तकाजा कर सकता हूँ, मुतालबा कर सकता, ना समोतात का कर सकता, किसी चीज़ का नहीं कर सकता। तो दाई को उतर जाना पड़ता है, छोटा बन जाना पड़ता है। आप बहुत बड़े आदमी की औलाद होंगे, आप बड़े आदमी होंगे, पैसे वाले होंगे, कुछ भी होंगे, आप बहुत काबिल होंगे, आप कुछ भी होंगे, उसको नहीं पता इन सब चीज़ों का। इसलिए जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए इंसानों में, तो जिनको दावत आप दे रहे थे वो लोग आपके साथ हर किस्म की बदतमीज़ी करते थे, आप पर थूकते थे, आपको मारते थे, आपका कंकर उठाते थे, आपको जादूगर कहते थे, आपको जनाब टीज करते थे, सताते थे, सब किया आपके साथ, जानी नुकसान भी पहुँचाया, इज्जत वाला नुकसान भी पहुँचाया, माली नुकसान भी पहुँचाया, जो हो सकता था उन्होंने किया। रास्ते में कचरा डाला, रास्ते के अंदर गलाजत डाली, रास्ते में कांटे बिछाए, नौजवान लड़कों को पीछे लगा दिया, वो सीटियाँ बजाते थे, वो पत्थर मारते थे, सब हुआ। हालांकि इतने बड़े पैगंबर हैं हम, उलुल अज़्म, और तमाम पैगंबरों के सरदार हैं, और अल्लाह पाक ने भी कुछ नहीं कहा। जब बहुत हद से ज़्यादा नौबत बढ़ गई तो फिर अल्लाह ताला ने एक मरतबा फरिश्ते भेजे ताइफ के पहाड़ों के, कि भाई अगर आप कहो तो इंतज़ाम करें इनका, तो कहते नहीं ठीक है छोड़ दिया, ना करें तो भी छोड़ दिया। मगर वो ताइफ के अलावा की पूरी ज़िंदगी भी तो जद्दोजहद से भरी हुई है ना, उसमें तो अल्लाह ताला कुछ भी नहीं फरमा रहे। क्यों इस वास्ते के उनको तो नहीं पता ना ये किस मकाम के आदमी हैं, उनसे मुतालबा नहीं किसी किस्म का। लेकिन जब मदीना मनोवरा आप तशरीफ़ ले गए, वहाँ जब लोग आपको पहचान गए, आप पर ईमान ले आए, तो फिर उनसे मुतालबा था कि बेद भी नहीं कर सकते आप, ज़ोर से आवाज़ नहीं कर सकते आप, इनसे आगे नहीं बढ़ सकते, ला तुक़द्दिमू बैन यदी अल्लाह व रसूलिही, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते आप, कमरे पे जाके आप बुला नहीं सकते या मोहम्मद उखरुज इलैना, नहीं कह सकते या मोहम्मद तशरीफ़ लाइए, बात करना है कुछ, बाहर बैठो। वलो अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकाना खैरुल्लाह, सब्र करो, जब खुद ही निकलेंगे तब बात करना, आपको बुलाना नहीं है। तो ये सब चीज़ें मक्के में तो नहीं थी। जब आप गैर मुस्लिमों में, गैर बेतलबों में गए थे, वहाँ तो नहीं थी ये सब बातें। हालांकि वही मर्तबा है हुजूर का, वही शान है हुजूर की। तो जब दावत का काम किया जाता है तो दावत के काम के साथ में अप्रिशिएटिंग नहीं है। ये आदत कर रहा था वही कि दावत के साथ में अप्रिशिएटिंग नहीं है, कोई हमारे को वो नहीं करेगा, आपने बहुत ये किया, आपने बहुत वो किया, बल्कि उतरना होता है, तनाजुल चाहिए उसमें, क्योंकि मधु हमको पहचानता नहीं, ना हमें पहचानता, ना हमारे मर्तबे को पहचानता, ना इल्म की फजीलत को जानता, ना आलिम की फजीलत को जानता, वो कुछ नहीं जानता। उलमाए किराम के इसमें इंटरेस्ट नहीं लेने का एक सबब ये भी है, जो उलमा नहीं लगते ना, मदरसे गुजार के आ गया उसके बाद छोड़ दिया, उसकी वजह एक ये भी है, और भी वजूहत हैं, एक ये भी है उसमें। इसलिए हमें तैयार होना चाहिए उसके लिए, पहले से वक्त इसीलिए लगवाया जाता है कि इसके लिए आदमी प्रिपेयर रहे, और इस किस्म की चीज़ें होती हैं इसमें। फिर यह है कि अल्लाह ताला ने इसको बहुत सादे अंदाज में रखा है, सिंपल अंदाज में है, छः बातें हैं, छः नंबर हैं। अब आता आदमी, आलिम आदमी सोचता है, तालिबे में सोचता है कि ये क्या है, ये तो एक दिन में याद हो जाते हैं, इसके बाद क्या काम है। हालांकि याद तो ये एक दिन में होते हैं, लेकिन हासिल पूरी ज़िंदगी में होते हैं, हासिल होने के लिए पूरी ज़िंदगी चाहिए। एक मरतबा मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी को एक जमात भेजी, उसमें से जो बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा होशियार समझे जाते थे साहब, 4 महीने लगा के आए, पूछा कि भाई कुछ सीखा, कह लेंगे हाँ बहुत कुछ सीखा, कह लेंगे क्या सीखा, तो कह लेंगे 6 नंबर सीख लिए पूरे, नहीं यार वाकई कमाल है तेरा, तो हमसे तो अभी ज़िंदगी भर में पहला नंबर भी नहीं सीखा गया अभी तक। तो याद होने के लिए तो 6 नंबर बहुत आसान है, 41वीं के लिए तो बहुत ही आसान है, बयान करने के लिए भी आसान है, थोड़ी सी मशक से बयान कर सकता है आदमी। लेकिन यह है कि लेकिन से क्या मुराद है? लेकिन से मुराद में यह है, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं आलिम हो गया और अल्लाह ने बहुत अच्छी सलाहियत मुझे दी, फिर उसके बाद जामिया के अंदर बहुत बड़े गालिबन बगदाद ही में या किसी और जगह रहे, वो वहाँ मैं वहाँ के जो सबसे बड़ा मदरसा था, स्कूल जामिया यूनिवर्सिटी थी अरबी की, उसमें वो सदर मुदर्रिस भी हो गए, हेड बड़े मुदर्रिस हो गए, सबसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए समय, और लोगों ने उनकी सलाहियत को लोहा मान लिया, वो भी उस ज़माने में मुस्लिम गवर्नमेंट में इस्लामी हुकूमत में, काजी भी उन्हीं के होते थे, उलमा भी होते थे, मुफ्ती तो होते ही थे उलमा में से, जज भी उन्हीं के सब होते थे, हाकिम भी वही होते थे, वज़रा भी वही होते थे, मिनिस्टर्स भी वही होते थे। तो जब उनकी सलाहियत का लोहा मान लिया तो कहने लगे, अचानक मेरे दिल में एक बात आई, वो बात ये आई कि कुरान पाक में फ़ैन आमनु बिमिसली मा आमनतुम, सहाबा से ख़िताब करके फरमाया कि लोग अगर ईमान लाए उसके मिसल जैसे तुम ईमान लाए हो, सहाबा के ईमान जैसा ईमान अगर तुम्हारा है तो हिदायत पर हैं। अचानक एक आयत मेरे दिल में आई, फ़ैन आमनु बिमिसली मा आमनतुम, तो मैंने सोचा कि क्या मेरा ईमान सहाबा के ईमान के मिसल है, ये मैंने सोचा, वैसा तो नहीं है। साहबा की ईमानियात का उनके यकीन का तो मैयार ही अलग था बिल्कुल, दुनिया तो उनके सामने बिल्कुल खसो खाशा कचरा थी, बिल्कुल गारबेज थी, कोई अहमियत नहीं, कोई वक़ात नहीं, कोई वज़न नहीं इसका, जैसे हुजूर ने उनको बताया था वैसी थी। हुजूर ने फरमाया मच्छर के पर की हैसियत नहीं है इसकी, तो उनके जहन में यही, उनके दिल में यकीन में यही था कि मच्छर के पर की भी इसकी हैसियत नहीं। और फिर फरिश्तों का जो निज़ाम है, किताब का जो निज़ाम है, रसूलों का जो निज़ाम है, तकदीर का जो निज़ाम है, अल्लाह पर ईमान का, आखिरत का, जन्नत और जहन्नम का, हजरत साहबा के पास जैसे जिस अंदाज़ का ईमान था उस अंदाज़ का ईमान मेरे पास नहीं है, अगरचे कि मैं शेखुल हदीस भी हूँ, शेखुल तफसीर भी हूँ, शेखुल फिका भी हूँ, फ़कीह भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे, सभी थे, इमाम हैं, यानी कि सब कुछ होने के बावजूद ईमान मेरा वैसा नहीं था जैसे साहबा का था। तो इस चीज़ ने मुझे बेचैन किया, मैं सब छोड़ छाड़ के निकल गया, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी उन्होंने। उस ज़माने में इस फील्ड पर काम कराने वाले जो है ना सूफिया होते थे, मशायखीन होते थे, तो फिर फलतफत तो इला तरीक़ी सूफिया लिखा मैंने, फिर मैंने सूफिया के तरीक की तरफ तवज्जो की, फिर तो उनके ऊपर इतना गलबा हुआ इश्क का, अल्लाह ताला की मोहब्बत का, कि बीमार हो गए। हकीमों ने इनको देख के कहा कि ये आदमी मरीज इश्क है, अगर इसको इसका मतलब नहीं मिला तो मर जाएगा, ये कहा हकीमों ने। खैर फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर बड़ा फजल फरमाया, जंगलों में रहे करसे तक, फिर को उनके शेख मिल गए, रहबरी की उनकी, तालीम की, तरबियत की, और फिर जो है ना उनको कुशुफ शुरू हो गए, दिल की दुनिया खुल गई उनके सामने, कश्फ कल्ब हो गया, उन कश्फ इलाही भी कहते हैं उसको। इसीलिए उन्होंने बड़ी उम्दा बहसें की हैं दिल की, बहुत ही अजीब गरीब बहसें हैं उनकी दिल से मुताल्लिक। तो गर्द यह है कि जहाँ तक ताल्लुक 6 सिफात का है, वो पहली सिफत ही ऐसी है कि उसको बहुत काम चाहिए, बहुत मुजाहिदा चाहिए, बहुत यकसोई चाहिए, मालूमात काफ़ी नहीं है उसके लिए, जो हम अपने करते हैं ना मदरसों में मालूमात हासिल करते हैं, मालूमात से हटके है कुछ थोड़ी सी चीज़ें, तो इसलिए इसमें लगे रहना है अपने, हम लगे रहेंगे ईमान पर मेहनत करते रहेंगे तो फिर हफ्ता अला शान हुई ईमान की हकीकत से नवाजेगा। ऐसे इबादत की मालूमात अलग हैं लेकिन इबादत की हकीकत अलग है। नमाज कब वाजिब होगी, औकात सलात क्या है, इब्तदा क्या है, इंतहा क्या है, शराइत क्या है, वाजिबात क्या है, मुस्ताहबात क्या है, मकरूहात क्या है, अरकान क्या है, कब सजदे सहू है, कब नहीं है, फला 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 जितनी चीज़ें होती हैं वो सब वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन बंदे का हक तआला के साथ में एक ऐसा ताल्लुक़ होना कि जिसके अंदर आबिद और माबूद का रब्त हो जाए, इबादत का तहक़्क़ुक़ हो जाए, जिसके लिए पैदा किया गया इंसान को, वो तो बहुत दूसरी चीज़ है। इसलिए हज़रत यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तकरीरों में है कि और हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात में भी है कि ये मेहनत जो है असल दो चीज़ों की मेहनत है, ईमान की मेहनत है और नमाज की मेहनत है। ये ईमान की मेहनत है, ये जो छः चीज़ें हैं इसमें, इन छः में दो मेहनत की चीज़ें हैं स्पेशल, क्योंकि इल्म की मेहनत के लिए तो मैदान दूसरा है, ईमान की मेहनत है और नमाज की मेहनत है। पूरे वजूद से, जाहिर और बातिन दोनों से, ज़ाहरी वजूद और बातिनी वजूद, पूरे वजूद से अल्लाह तबारक व ताला की तरफ कामिल मुतवज्जे हो जाने का नाम नमाज है। उसकी मशक है कि आप जितनी देर नमाज में हो पूरे के पूरे वजूद से उधर ही मुतवज्जे हो जाए। आप पूरे नमाज पर गौर करेंगे तो आपको यही मिलेगा। इसीलिए तहरीम हुआ तकबीर व तहलील हुआ तस्लीम। एहराम बांधता है आदमी तकबीर के ज़रिए से और एहराम खोलता है अस्सलाम वालेकुम के ज़रिए से। उसमें होता यह है कि चूंकि पूरे वजूद की तवज्जो की मशक है अल्लाह ताला की तरफ, तो उसमें किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। रोज़े की हालत में आप खा नहीं सकते, लेकिन खाने के लिए पका सकते। औरतें पूरा दिन तमाम रोज़े की हालत में चूल्हे के पास पकाती रहती हैं, खा नहीं सकते लेकिन पका। नमाज में ना खा सकते ना पका सकते। हज में आप बगैर सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, लेकिन हज ख़त्म होने के बाद पहनने के लिए सीते बैठ सकते आप। हज में बगैर सिला हुआ कपड़ा पहना है ना, लेकिन सी सकते आप एहराम की हालत में, ताकि जब एहराम ख़त्म हो फिर मैं ईद के कपड़े पहनूँ बल्कि सी सकते आप। नमाज के अंदर नहीं कर सकते, सीते भी नहीं बैठ सकते आप। जो चीज़ मना है वो कुछ किसी दर्जे में भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे वजूद से तवज्जो सीखने का है। जुबान भी उसी में, हाथ पैर भी उसी में, दिमाग भी उसी में, दिल भी उसी में। इसीलिए शुरू दिल से है नमाज, नियत का ताल्लुक दिल से होता है, फिर जुबान पे आते हैं, फिर उसके बाद जवारह पर आ जाती है बात। तो रूहानियत से और जिस्मानियत से, जाहिर से, बातिन से, पूरे के पूरे वजूद से हक तआला शानुहु की अजमत के अंदर डूब जाना और अपने को मुस्तहलक कर देना, हलाक कर देना, उसमें मेल्ट कर देना अपने आप को, तो वो एक बड़ी मशक है। वो तो सिफात, छह सिफात जो हैं ये बोलने को बहुत आसान है, मौलवी के लिए तो एक दिन का काम है, दो दिन का काम है, लेकिन सीखने के लिए ज़िंदगी भर चाहिए। और इसी से इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक मुस्तकिल फील्ड है, ये अलग फील्ड है। ये पहले मदारिस के अंदर जो पढ़ाने वाले लोग थे वो दोनों के जामे होते थे, तो इसलिए वो जमा हो जा सकती थी। इस ज़माने में वो चीज़ बहुत कम हो गई, इल्ला माशाल्लाह कोई बंदा अपने को मिल जाए, अलग बात है, ऐसा भी हो सकता है कभी, लेकिन वो अलग दुनिया है पूरी, उसकी तवज्जो की बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ती है। इसलिए लगे रहना चाहिए काम में। बस अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको कबूल फरमाए, और बहुत आपने अच्छा किया, क्या किया, ये वक्त लगाए, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई।